ओम शांति। आज 2 दिसंबर 2023 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, समय प्रति समय ज्ञान सागर के पास आओ। समय प्रति समय मतलब बार बार
ज्ञान सागर के पास
आओ। ज्ञान रत्नों का वखर, वखर बोलते हैं सामान को, भरकर फिर बाहर जाकर डिलीवरी करो। आज क्या बना दिया हमें, डिलीवरी बॉय। डिलीवरी बॉय जानते हैं, नहीं सेलमैन अलग होता है, डिलीवरी बॉय अलग होता है। सेलमैन ये होता है कि वो सामान लेके जाता है और जा करके बेचता है। डिलीवरी बॉय क्या होता है कि दुकान से सामान बिक गया, आज आपको घर बैठे कोई सामान चाहिए, आपको तुरंत घर बैठे सामान मिलेगा। आपको कोई भी चीज, नमक चाहिए, मिर्च चाहिए, हल्दी चाहिए, कुछ भी चाहिए, हाँ जी, हाँ, मतलब आप मोबाइल पर उनको पैसे दे दो और 10-15 मिनट में आपके पास सामान आ जाएगा। आपको भागने की जरूरत नहीं है। आप बाहर से कहीं से आ रहे हो, आप घर पहुंचोगे, सामान आपके लेके खड़ा होगा। दूध चाहिए, जो चीज चाहिए, हाँ, भागने की जरूरत नहीं है। तो मतलब कहने का उसको बोलते हैं डिलीवरी बॉय, आओ सामान उठाओ और जा करके देकर आओ। ये होता है डिलीवरी करो, इसे क्या कहते हैं डिलीवरी करो। जो भी सामान है आओ, अपना भाव सागर से भरो सामान और जा करके देकर आ जाओ। विचार सागर मंथन कर सेवा में लग जाओ। विचार सागर मंथन करो कि कैसे हम अपना बाबा का ज्ञान जो है ना सब तक पहुंचाएं, और फिर सब तक पहुंचाने की क्या करो, सेवा करो। प्रश्न, सबसे अच्छा पुरुषार्थ कौन सा है? सबसे अच्छा पुरुषार्थ कौन सा है? बाप को कौन से बच्चे प्यारे लगते? सपूत बच्चे किसे कहेंगे? पहले तो बताना है हमें सबसे अच्छा पुरुषार्थ कौन सा है। कौन सा पुरुषार्थ है सबसे अच्छा? किसी का भी जीवन बनाना। सारी दुनिया अंधी है, अंधेरे में बेचारी भटक रही है, उन आत्माओं को रास्ता दिखाना, उनको सही रास्ते पर चलाना, यही सबसे अच्छा पुरुषार्थ है। जब हम दूसरों को सही रास्ते पर चलाएंगे तो खुद गलत रास्ते पर चलेंगे, नहीं चल सकते ना। खुद का सुधार अपने आप हो जाएगा, खुद गलत रास्ते पर नहीं चल सकते। जब हम दूसरे को बता रहे हैं कि ये रास्ता अच्छा है, इससे आपको फायदा होगा, और खुद कहेगा नहीं मैं गलत रास्ते पर जाऊं, खुद तो गलत रास्ते पर नहीं जाएगा ना। फिर तो पुरुषार्थ करने के लिए बाबा ने सीधा एक स्टेप आगे की बात की है कि सबको श्रेष्ठ रास्ता दिखाओ, मेरे से मिलाओ, और मेरे से जब वो ज्ञान लेगा उसको खुशी मिलेगी, उससे पहले आपको भी खुशी मिलेगी। ये बहुत अच्छा पुरुषार्थ है। बच्चों को इसी पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए कि सारे संसार का हमने बेड़ा पार करना है, अकेले हमको नहीं जाना है, हमने सबको साथ लेकर जाना है, ताकि सारे अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाकर स्वर्ग में हम फिर मिले। स्वर्ग में फिर हम मिले, अकेले क्यों जाएं? अकेले जाएंगे क्या करेंगे वहां? साथी तो चाहिए ना। तो जो साथी हमें चाहिए उन साथियों का भी तो हमें क्या करना होगा, कल्याण करना ही होगा। तो इस पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। अभी अगर कोई भूल हो जाती है तो उसके बदले खूब सर्विस करो, नहीं तो वह भूल क्या हो जाएगी, दिल को खाती रहेगी। वही भूल दिल को खाती रहेगी। बाप को ज्ञानी और योगी बच्चे ही बहुत प्यारे लगते हैं। जो मेरी श्रीमत के अनुसार चलते हों वो है ज्ञानी और योगी बच्चे। जानी जान लिया, योगी उस पर चलते हैं, उसको प्रैक्टिकल करते हैं, तो वो बाबा को बहुत प्यारे लगते हैं। गीत, जो पिया के साथ है उनके लिए ज्ञान बरसात है। ओम शांति। बच्चे समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं कि सम्मुख मुरली सुनना व टेप पर मुरली सुनना दोनों में क्या है, अंतर है। टेप पर मुरली सुनना और सम्मुख मुरली सुनना दोनों में फर्क जरूर है। क्या फर्क है सोच करके देखो। नहीं, टेप पर लिखी लिखा क्योंकि आवाज बिल्कुल वही के वही होगी। हाँ जी,
हम बात कर रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं, तो उसमें क्वेश्चन का आंसर हम पूछ सकते हैं, लेकिन जो टीवी टेलीविजन पे या दे रहा है उसको नहीं मिले।
वहाँ पर हम अपनी कोई बात पूछना चाहें, स्पष्ट है उसे स्पष्ट करना चाहें तो नहीं कर सकते, ठीक है नहीं। और दूसरा क्या होता है कि सामने वाले के चेहरे के एक्सप्रेशंस भी हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं। जैसे हम केवल मोबाइल में सुने और एक हम टेलीविजन पर सामने देखें तो उसका भी बड़ा फर्क रहता है। अब जैसे माउंट आबू के अंदर हालांकि टेलीविजन पर चलाते हैं, फिर बहुत सारे भाई बहनों को बहुत अच्छा लगता है कि भी हम बाबा से ही मिलन मनाए। बाबा तो नहीं आए, केवल क्या चली, वीडियो चली, ठीक है नहीं। परंतु फिर भी संगठन का बल, वातावरण का प्रभाव अच्छा पड़ता है। सन्मुख मुरली सुनना व टेप में सुनना व कागज पर पढ़ना और कागज पर मुरली पढ़ना बड़ा फर्क होता है। अपने आप स्पीड से पढ़ के एक तरफ कर दिया, 15-20 मिनट में मुरली पढ़ के फ्री हो जाते हैं। तो गीत में भी कहते हैं जो पिया के साथ है उनके लिए ही ज्ञान की बरसात है। बरसात तो सबके लिए है, परंतु साथ में रहने से आपके एक्सप्रेशन को समझने, चेहरे के जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो क्या होते हैं समझने में फर्क पड़ता है ना। बाप के एक्सप्रेशंस को समझने, भिन्न भिन्न डायरेक्शन को जानने का बहुत बहुत फायदा होता है। परंतु ऐसे कभी नहीं बैठ जाना, ऐसे कभी नहीं बैठ जाना है, वखर भरा और जाकर सर्विस की। आओ वखर भरो, ज्ञान की बातें सीखो और जाकर दूसरों को डिलीवरी कर दो, अपने अंदर नहीं रख लेना। फिर आया वखर भरने के लिए, वो समझा के आ जाओ, फिर और ले जाओ, क्योंकि और लेंगे तब तो हमारा खुशी बढ़ेगी, और लेंगे तो हमारी कमाई होगी। काम जितना करेंगे, सेवा जितनी करेंगे, उतनी तो कमाई होगी ना। मनुष्य सामान खरीद करने जाते हैं बेचने के लिए, बेचकर फिर सामान लेने आते हैं। ये भी ज्ञान रत्नों का वखर है, यह भी ज्ञान रत्नों का वखर है। वखर लेने वाले तो आएंगे ना, सामान लेने वाले तो आएंगे ना, कोई डिलीवरी नहीं करते हैं, पुराने वखर पर ही रहते हैं, नया लेना नहीं चाहते हैं, ऐसे भी बेसमझ है। कहते हमें समझ में आ गया, आत्मा परमात्मा योग धारणा और यही बातें रोजाना बाबा बताते रहते हैं, क्या करना रोज रोज। एक दिन सुन लिया काफी है, क्या है रोज रोज सबसे जो नहीं आता है, नहीं काफी है बस, ठीक है सुन लिया, पता लग गया। सप्ताह में एक आधा बार चले जाएंगे, मुरली सुन लेंगे वो। हाँ जी, हाँ वो धीरे धीरे बैठ जाएगा। घर मनुष्य तीर्थों पर जाते हैं, तीर्थ तो नहीं आएंगे ना, तीर्थों पर जाते हैं ना, तीर्थ तो घर पे नहीं आएगा ना, क्योंकि वे तो जड़ चित्र हैं। इन बातों को बच्चे ही जानते हैं, मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। बहुत बड़े बड़े गुरु लोग श्री श्री महामंडलेश्वर आदि जिज्ञासुओं को तीर्थों पर ले जाते हैं, तीर्थों पर ले जाते हैं। और त्रिवेणी पर कितने जाते हैं, नदी में पर जाकर दान करने को पुण्य समझते हैं, और यहाँ भक्ति की तो बात ही नहीं। यहाँ तो बाप के पास आना है तो बच्चों को समझकर फिर समझाना है, प्रदर्शनी में भी मनुष्यों को समझाना है। ये जो 84 जन्मों का चक्र लगाते हैं ये तो बच्चे जानते हैं, सब नहीं लगाते, सब नहीं लगाते हैं। इसमें समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए, समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। इस चक्र में ही मनुष्य मूंझते हैं। झाड़ का तो किसी को पता ही नहीं है, झाड़ का तो किसी को पता नहीं है। शास्त्रों में भी चक्र दिखाते हैं, शास्त्रों में भी चक्र बना हुआ है, सृष्टि चक्र का सातिया बना हुआ है। कल्प की आयु चक्र से निकालते हैं, कल्प की आयु को चक्र से निकालते हैं। चक्र में रो ही रोला है, ही रोला है, रोला हो जाता है ना, हाँ बिगड़ जाता है, उल्टा हो जाता है। मैं कह रहा हूं ऐसे करो, वो कहता है ऐसे करो, यहां रोला हो गया। हम तो पूरा चक्र लगाते हैं, 84 जन्म लेते हैं। बाकी इस्लामी बौद्ध आदि वे तो बाद में आते हैं। हम कैसे उस चक्र में सतो रजो तमो में पास करते हैं, वे गोला में दिखाया हुआ है, वो गोले में क्या है दिखाया हुआ है। बाकी और जो आते हैं इस्लामी बौद्ध आदि, उनको कैसे दिखावें, वे भी तो सतो रजो तमो में आते हैं। हम भी सतो रजो तमो में आते हैं तो वो भी क्या होते हैं, सतो रजो तमो में आते हैं। हम अपना विराट रूप भी दिखाते हैं, सतयुग से लेकर कलयुग तक पूरा राउंड ले आते हैं। चोटी है ब्राह्मण, फिर मुख को सतयुग, बाहों को त्रेता युग, पेट को द्वापर में, और टांगों को कलयुग में लास्ट में खड़ा करें। अपना तो विराट रूप दिखाएं, ये हमारा विराट रूप है, बाकी अन्य धर्म वालों को का कैसे दिखाएं, उसे भी शुरू करें तो पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो, फिर सतो रजो तमो, तो इससे सिद्ध हो जाएगा कि कभी भी कोई निर्वाण में नहीं गया। इससे क्या सिद्ध हो जाएगा, कभी भी कोई भी निर्वाण में नहीं गया। इनको तो इस चक्र में आना है, आना ही है, हर एक को सतो रजो तमो में आना है। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि भी तो मनुष्य थे, चाहे इब्राहिम हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे क्राइस्ट हो, ये भी सारे क्या थे, मनुष्य ही तो थे। रात में बाबा को बहुत ख्याल चलता है, ख्यालात में फिर नींद का नशा उड़ जाता है, नींद ही फिर जाती है, नींद ही नहीं आती है। समझाने की बड़ी अच्छी युक्ति चाहिए, उनका भी विराट रूप बनाना पड़े, उनका भी पैर पिछाड़ी में ले जाएं, फिर लिखत में समझाएं, फिर लिखत में समझाएं। बच्चों को समझाना है, क्राइस्ट जब आते हैं उनको भी सतो रजो तमो से पास करना पड़ता है। सतयुग में तो वे आते नहीं, आना तो बाद में है, कहेंगे क्राइस्ट हेवन में नहीं आएगा, ये तो बना बनाया खेल है। तुम जानते हो क्राइस्ट के आगे भी धर्म थे, क्राइस्ट के आगे भी धर्म थे, फिर वो ही रिपीट करना है। ड्रामा का राज समझाना होता है, पहले पहले तो बाप का ही परिचय देना है, बाप से कैसे सेकंड में वर्षा मिलता है, गाया भी हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति, सेकंड में जीवन मुक्ति। देखो बाबा के कितने ख्याला चलते हैं, बाबा के कितने ख्याला चलते हैं। बाबा का पार्ट है विचार सागर मंथन करना, गॉड फादरली बर्थ राइट नाउ एंड नेवर, अभी नहीं
तो
कभी नहीं। अक्षर लिखा हुआ है, जीवन मुक्ति अक्षर लिखना है। वो मुक्ति को जानते हैं, जीवन मुक्ति को
नहीं जानते।
ये लिखना है, लिखत क्लियर होगी तो समझाने में सहज होगा। जीवन मुक्ति का वर्षा मिला, जीवन मुक्ति में राजा रानी प्रजा सब है, तो लिखत को भी ठीक करना पड़े, लिखत को भी ठीक करना पड़े। बिगर चित्र भी समझाया जा सकता है, चित्रों की जरूरत नहीं है कि चित्र हो तो समझाऊं क्या करूं, चित्र तो मेरे साथ था ही नहीं। परंतु चित्र हमारी बुद्धि में हो और शुरू से लेके आखिर तक सारी कहानी समझाते जाए, हमारे शब्दों से उनको दिखाई दे, हमारे एक्सप्रेशन से उनको समझ में आए, सिर्फ इशारे पर भी समझाया जा सकता है। ये बाबा है, ये वर्षा है, जो योग युक्त होंगे वो अच्छी रीति समझा सकेंगे। मतलब ब्रह्मा बाबा कैसे समझाते थे, जब कोई चित्र नहीं था, कोई चित्र नहीं था, ऐसे हाथ पर, जैसे बाबा बता रहे ना ऐसे हाथ पर समझाते थे। देखो तुम हो देवी देवता, सतयुग में तुम देवी देवता थे, अब फिर तुम देवी देवता बनोगे। तो देवी देवताएं प्याज लहसुन को भोग लगाते हैं, तो तुम तो देवता बनने वाले हो, तुम कैसे प्याज लहसुन खाओगे। ऐसे हाथ पर कोई चोर चाट नहीं, बोर्ड नहीं, कुछ नहीं, आज हम चित्र बना करके समझाते हैं। तो इस प्रकार से उनको समझाया कि अब तुम सोचो कि देवी देवता बनने वाले हो, कैसे खा सकते हो। तुम आत्मा हो, ये शरीर है। अब इसके लिए कोई चित्र नहीं बनाया था, शुरू में कोई चित्र नहीं होते थे। तुम आत्मा हो, ये तुम्हारा शरीर है, तुम आत्मा इसकी भ्रकुटी में बैठे हो। मतलब ऐसे समझाया जाता था। बाबा कहते हैं हाँ ऐसे समझाओ, क्या जरूरत है चित्र की, क्या जरूरत है। बाबा कहते हैं वो अच्छी रीति जो योग युक्त होंगे, जो कौन होंगे, योग युक्त होंगे, बाबा की श्री मत को अच्छी तरह समझे हुए होंगे, वो अच्छी रीति समझा सकेंगे। क्योंकि जो घर बैठकर मन मना भव करते होंगे वही समझा सकेंगे ना। सारा मदार योग पर है, योग से बुद्धि पवित्र होती है, योग से बुद्धि पवित्र होती है, तब ही तो धारणा हो सकती है, तब ही तो धारणा हो सकती है। इसमें देही अभिमानी अवस्था चाहिए, सब कुछ भूलना पड़े, शरीर को भी भूलना है, बस अब हमको वापस घर। ये दुनिया तो खत्म हो जाने वाली है, ये दुनिया तो क्या होनी है, खत्म हो जाने वाली है। इस बाबा के लिए तो, इस ब्रह्मा बाबा के लिए तो सहज है, क्योंकि इनका धंधा ही यही है, सारा दिन बुद्धि इसी में लगी हुई है, रात दिन बस बाबा ब्रह्मा बाबा को यही एक बुद्धि में धुन लगी हुई थी, कैसे सारे विश्व की आत्माओं को बाबा का ज्ञान दिया। जो सच मुझे समझ में आया है वो सच सबको समझाया जाए। अच्छा, जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं उनको तो कर्म करना है, इसको तो कोई काम है नहीं, ये ब्रह्मा बाबा तो बिल्कुल निकम्मा है, इसको तो बस एक ही काम रह गया है, सारी दुनिया को अपने जैसा बनाना है। और तो बाकी तो देखो घर गृहस्थ में रहने वाले हैं, उनको तो कर्म करना है, रोटी खानी है, कमा के भी लाना है। स्थूल कर्म करने से वो बातें भूल जाते हैं, स्थूल कर्म करने से वो बातें भूल जाते हैं, बाबा की याद भूल जाती है। उनको काम करने लगते हैं तो बाबा की याद उनको भूल जाती है। बाबा खुद अपना अनुभव सुनाते हैं, ब्रह्मा बाबा जिनको 24 घंटे और कोई काम नहीं, वो अपना अनुभव सुनाते हैं, बाबा को याद करता हूं, बाबा इस रथ को खिला रहे हैं। क्या क्या याद करता है बाबा, कि बाबा जो है शिव बाबा इस रथ को खिला रहा है। कौन खिला रहा है, शिव बाबा, मैं नहीं खिला रहा, शिव बाबा भी खाता नहीं, तो ब्रह्मा बाबा कहते मैं भी खाता नहीं, खूब सकता। देखो मैं इनकी चलाकियां देखो ना, इन चलाकियों को बाबा कहते अपने पास लेके आओ। ब्रह्मा बाबा कहते हैं मैं तो खाता नहीं, क्योंकि मैंने तो तुम्हें शरीर दे दिया है, अब तेरा शरीर है, तेरे शरीर को मैं खिला रहा हूँ। ब्रह्मा बाबा कहता है मैं ये सोच करके खिलाता हूँ, और शिव बाबा कहता है भाई मैं तो खाता नहीं हूँ, मैं तेरे शरीर को खिला रहा हूँ। दोनों एक दूसरे के शरीर को खिला रहे हैं, एक है किराएदार, एक है मकान मालिक।
वो मकान मालिक है, इसके ऊपर बैठा
है। हाँ जी,
इसके ऊपर बैठा है मालिक है।
अब दोनों किराएदार हैं कहते हैं,
दोनों किराएदार।
हाँ, शिव बाबा नहीं, मतलब ये जो इस मकान का मतलब, मकान का मतलब शरीर। शिव बाबा कहता है देख भाई तेरा शरीर है, मैं इसमें किराएदार हूँ, मैं तो आया हूँ थोड़ी देर पाठ बजाने के लिए। और वो कहता है मैंने तो आपको तन मन धन तेरे को दे दिया, और तुमने कहा है कि मैं किराएदार हूँ, अब ये शरीर मेरा है। दोनों जो है ना एक दूसरे को
कटिंग कर रहे
हैं। हाँ, और वो कहता है तेरा शरीर है, तो वो कहता है वो तेरा शरीर है, दोनों कहते हैं मेरा शरीर नहीं है। अब आप समझ लो कि कौन सटकता है, तो बाबा कहते हैं ऐसे सटको। नहीं, अभी ऐसे ही मतलब क्या है ना कि ब्रह्मा बाबा कहता है मैं नहीं खाता, शिव बाबा कहता है मैं नहीं खाता, वो कहता है तेरा शरीर है, वो कहता है तेरा शरीर है, वो कहता है मैं किराएदार हूँ, कहता है तू किराएदार है। बाबा को ना भोजन की जरूरत है ना भावना की जरूरत है, ये जरूरत है तो सिर्फ हमें है जरूरत कि हम अपनी जितना श्रेष्ठ भावना बनाएंगे उतना हम अपना भाग्य श्रेष्ठ बना सकेंगे। बाबा को क्या करना है, बाबा ने खाना ही नहीं, बाबा को कोई मतलब नहीं, बाबा का कोई काम नहीं है।
पूछ नहीं तो पड़ती है,
पूछ लो बताएगा, पूछो कोई काम बताओ, आप कोई बात पूछो बाबा से, क्या पूछना चाहते हो।
कोई भी कार्य करते हो, कार्य करते हैं तो उसके नाम से जो है ना भोग रखा जाए,
रख दो, फिर भी बात आ रही है। आप कोई भी काम करो, भगवान के नाम से आपने भोग निकाल के रख दिया तो क्या हो गया, उसमें क्या बरकत आ जाएगी
आपका मार्ग, मतलब खत्म है
मेरे भाई। ये आपकी भावना,
ये
आपकी भावना है कि मैंने बाबा को भोग लगा दिया, अब माल खत्म नहीं
है।
नहीं खाना मतलब बाबा खाते नहीं है, और भावना से बाबा को कोई मतलब, आपका विश्वास आपको बनाता है कि भी अब मैंने ये काम इस तरीके से कर दिया है, अब ये पूरा होगा होगा, परंतु उसके बाद भी खुट जाता है तो बाबा कहते हैं कहो ड्रामा, उसके बाद भी खुट जाता है तो क्या कहो ड्रामा। मतलब भावना का मतलब बाबा कहते बच्चे मुझे याद रखने का मतलब सारी मेहनत तुमने करनी है, ये नहीं कि भी बाबा का मैंने बाबा का नाम दिया और घी मैंने कड़वे काट के बना दिए, बाबा अब घिया तो कड़वे कट गया है बन गया है, अब इसको मीठा कर दे, बाबा मीठा करने वाला नहीं होगा। मतलब इसी प्रकार से जो चीज बनाई, अब आपने बनाए कम है, अब आप उसमें से भोग निकाल के रख दिया, तो बाबा पूरा कर दियो, कैसे कर देगा पूरा। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई आपको युक्ति लगानी पड़ेगी कि प्रसाद कम है तो थोड़ा थोड़ा दे दो, ठीक है ना, युक्ति। बाकी ये बाबा का कोई काम नहीं है कि उसको बड़ा कर दे। कई कई लोग सुनाते हैं ऐसे कि कम बन गया, देखा कि बहुत लोग आ रहे हैं, और उसके बाद वो बांटते गए खत्म ही नहीं होता था। मतलब ये सब जो है ना, तुम्हारा ये सब क्या है कि कोई जादू मंत्र नहीं, हाथ की सफाई है, ये सब क्या है, हाथ की सफाई का खेल होता है,
जादूगर दिखाता है। हाँ। ये भी ड्रामा में है, ये समझ
बिल्कुल। मतलब बाबा का ज्ञान यही है कि जो कुछ भी होगा वो ड्रामा में नूंद ही होगा, जो ड्रामा में नूंद नहीं है वो हो ही नहीं सकता।
मैं तो जी
रखो, आपकी भावना है, हम से कोई मतलब नहीं। बाकी ये सोचो कि उसे कोई ना कोई चीटी, कोई ना कोई वो खाएंगे, बाकी परमात्मा आकर के उस भोजन को स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, भक्ति का मतलब ही भावना है। बाबा इस रथ को खिला रहे हैं, फिर भूल जाता हूँ तो बाबा विचार करते हैं, जबकि मैं भी भूल जाता हूँ, मैं भी भूल जाता हूँ तो इन विचारों को कितनी तकलीफ होती होगी। मैं इतना निकम्मा, मेरे को कोई काम धाम नहीं, सिर्फ सारे संसार को एक बाबा का संदेश देने का ही मेरा काम रह गया, ब्रह्मा बाबा कहते, मैं भी भूल जाता हूँ। और ये तो इनको तो बहुत काम करने पड़ते, है नहीं? इनको तो फिर भूलता ही होगा, क्योंकि इनको तो धंधा करना है, रोटी कमाने के लिए काम करना है, जाना है, मिलना है, मिलना है। विचारों को कितनी तकलीफ होती होगी, इस चार्ट को बढ़ा कैसे सकते होंगे। प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए मुश्किल है, उनको फिर मेहनत करनी पड़ती है। बाबा समझाते तो सबको हैं, जो पुरुषार्थ करते होंगे वो रिजल्ट लिख भेज सकते हैं, वो रिजल्ट लिखकर भेज सकते हैं। बाबा जानते हैं बरोबर डिफिकल्ट है, बरोबर क्या है, डिफिकल्ट है। बाबा कहते हैं रात को मेहनत करो, तुम्हारा थक सारा उतर जाएगा। रात को क्या करो, मेहनत करो। कौन सी मेहनत करो? मन मना भाव करने की। और जब अपने आप को समझाएंगे, अच्छा आज बाबा ने इतनी अच्छी बात बताई, उससे जो खुशी मिलेगी वो आपकी सारी थकावट को क्या करेगी, दूर करती। कल की मुरली में था ना, खुशी जैसी खुराक, खुशी मिल जाती है तो बीमारी भी दूर हो जाती है। अगर तुम योग युक्त हो, विचार सागर मंथन करते रहेंगे तो बाबा अपना अनुभव बताते हैं, कब और बातों तरफ बुद्धि चली जाती है तो माथा गर्म हो जाता है। मतलब अच्छे अच्छे विचार करते करते कभी बुद्धि कुछ और सोचने लग जाती है, तो फिर जब हम व्यर्थ बातें, गंदी बातें अपनी बुद्धि में लाते हैं, उल्टी बातें अपनी बुद्धि में लाते हैं, तो हमारा माथा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, टेंशन बढ़ जाती है, माथा गर्म हो जाता है। फिर उन तूफानों से बुद्धि को निकाल, इस विचार सागर मंथन में लग जाता हूं तो माथा हल्का हो जाता है। बता रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा बता रहे हैं, जब उल्टे विचार आने लगते हैं, ऐसे ही सिखा रहे हैं कि भी आपको भी क्या करना है, कि कोई उल्टे विचार आए उसको झटको, और फिर बाबा की बातें, बाबा की श्रीमत को अपनी बुद्धि के अंदर मंथन करना शुरू कर दो तो माथा हल्का हो जाएगा। माया के तूफान तो अनेक प्रकार के आते हैं, इस तरफ बुद्धि लगाने से ये थकावट सारी उतर जाती है। इस तरफ बुद्धि लगाएंगे ना तो आपकी सारी थकावट दूर हो जाएगी, बुद्धि रिफ्रेश हो जाती है, बाबा की सर्विस में लग जाते हैं तो योग और ज्ञान का मक्खन मिल जाता है। बाबा की सेवा में लग जाओ, बस ज्ञान और योग दोनों का मक्खन आपको मिल जाएगा। ये बाबा अनुभव बता रहे हैं, बाबा तो बच्चों से बताएंगे ना, ऐसे ऐसे होगा, माया के विकल्प आएंगे, बुद्धि को फिर उस तरफ लगा देना चाहिए, चित्र उठाकर उस पर ख्यालात करना चाहिए, तो माया के तूफान उड़ जाए, माया के तूफान उड़ जाए। बाबा जानते हैं, क्या जानते हैं, कि माया ऐसी है जो याद में रहने नहीं देती, थोड़े हैं जो पूरा याद में रहते हैं। बड़ी बड़ी बातें तो बहुत करते हैं, अगर बाबा की याद में रहें तो बुद्धि क्लियर रहे, तो बुद्धि क्लियर रहे, तो याद करने जैसा मक्खन और कोई है नहीं। परंतु स्थूल बोझा बहुत होने के कारण याद नहीं करते, याद कम हो जाती है। बंबई में देखो, पोप आया चर्च का, कितनी उनकी महिमा थी, जैसे कि सबका भगवान आया था, इतनी महिमा, सारे क्रिश्चियंस उस पोप को देखने के लिए ताकत वाले हैं ना, भारतवासियों को अपने धर्म का पता नहीं है, अपना धर्म हिंदू कहते हैं, कहते रहते हैं, हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है। भारत वाले हिंदू कहते रहते हैं परंतु हिंदू तो कोई धर्म नहीं है। कहां से आया, कब स्थापन हुआ, किसको पता नहीं है। तुम्हारे में ज्ञान की उछल आनी चाहिए, शिव शक्तियों का को ज्ञान में उछल मारनी चाहिए। उन्होंने तो शक्तियों को शेर पर दिखाया है, उन्होंने तो शक्तियों को शेर पर दिखाया है। है सारी ज्ञान की बात, है सारी ज्ञान की बात। पिछाड़ी में जब तुम्हारे में ताकत आएगी तो साधु संत आदि को भी समझाएंगे। इतना ज्ञान जब बुद्धि में हो तब उछल आ सकती है। जैसे पाता गांव में खेती करने वालों को टीचर पढ़ाते हैं, मतलब कोई गांव होगा वहां खेती करने वालों को कोई टीचर जाकर पढ़ाते हैं तो वे पढ़ते नहीं। पहले ऐसे तो था ना, कभी ना जिसको बोलते थे उड्ढो की पढ़ाई, ऐसे नाम था कुछ ना, प्रौढ़ शिक्षा, ठीक है ना, प्रौढ़ शिक्षा। भी बूढ़े हैं गारु गा। उनको नाम लिखना सिखाते थे, कुछ भी कुछ तो सीख जाए ना, तो उनको जाके टीचर पढ़ाते थे तो वे पढ़ते नहीं। उनको खेती बाड़ी ही अच्छी लगती, हम क्या पढ़ेंगे, क्या करना है। ऐसे आज के मनुष्यों को ये ज्ञान दो तो कहेंगे ये अच्छा नहीं लगता। प्रौढ़ शिक्षा देते थे उनको अच्छा नहीं लगता था, और ये ज्ञान दो तो भी अच्छा नहीं लगता। हमको तो शास्त्र पढ़ने हैं, परंतु भगवान साफ कहते हैं, उन शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, जप तप दान पुण्य पूजा पाठ व्रत नियम से मैं नहीं मिलता, मैं नहीं मिलता। शास्त्र पढ़ने से मेरे को किसी ने नहीं पाया। कोई एक ढूंढ के लाओ जिसने सारे शास्त्र पढ़े हो और भगवान मिल गया उसको। ड्रामा को नहीं जानते वे, थोड़े ही समझते हैं कि नाटक में एक्टर्स हैं हम इस ड्रामा के क्या हैं, एक्टर्स हैं। कहते हैं वर्ल्ड एक ड्रामा है, हम इसके एक्टर हैं। ये ड्रेस पहनकर हम पार्ट बजा रहे हैं। ये है ही कांटों का जंगल, ये दुनिया क्या है, कांटों का जंगल। एक दूसरे को कांटा लगाते लूटते मारते रहते हैं। सूरत भल मनुष्य की है परंतु सीरत बंदर की है, बंदर जैसी है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, कोई नया सुने तो गर्म हो जाए। बच्चे थोड़े ही गर्म होते हैं, बाप कहते हैं मैं बच्चों को ही समझाता हूँ। बच्चों को तो माता पिता कुछ भी कह सकते हैं। बच्चों को बाप चमाट भी मारे तो दूसरे थोड़े ही कुछ कर सकते हैं। माता पिता का तो फर्ज है बच्चों को सुधारना, परंतु ये ला नहीं है, परंतु ये ला नहीं है। जैसा कर्म मैं करूंगी मुझे देख और भी करेंगे। तो बाबा ने जो विचार सागर मंथन किया वे भी बतलाया है, वो भी बतलाया है। ये पहला नंबर में है, इनको 84 जन्म लेने पड़ते हैं। तो और भी जो हेड्स धर्म स्थापक हैं वे फिर निर्वाण में कैसे जाएंगे, वे फिर निर्वाण में कैसे जाएंगे। उनको सत्व रजो तमो में जरूर आना है, सत्व रजो तमो में जरूर आना है। पहला नंबर में लक्ष्मी नारायण है जो विश्व के मालिक हैं, उनको भी 84 जन्म लेने पड़ते हैं। मनुष्य सृष्टि में जो हाईएस्ट न्यू मैन है उनके साथ न्यू वीमेन भी चाहिए, न्यू मैन के साथ क्या चाहिए, न्यू वीमेन भी चाहिए, नहीं तो वीमेन बिगर पैदाइश कैसे होगी। सतयुग में न्यू मैन है ये लक्ष्मी नारायण, सतयुग में ये न्यू मैन है लक्ष्मी नारायण। ओल्ड से ही न्यू होते हैं, ओल्ड से ही न्यू होते हैं, ये तो ऑल राउंड पार्ट वाले हैं। न्यू मैन बाबा ने कितने बताए याद आते हैं आपको, एक मुरली बाबा ने स्पेशल चलाई थी इसी पर ही, तो उसने कहा कि न्यू मैन है ब्रह्मा, मैं आकर इसे ब्रह्मा बनाता हूं, थे न्यू मैन है ब्रह्मा, और उसको उसको ही फिर मैं सर्स उसको ही मैं अपनी वन्नी बनाता हूं, तो न्यू वीमेन भी कौन है ब्रह्मा, ब्रह्मा न्यू मैन भी है, ब्रह्मा न्यू वीमेन भी है, जिसके द्वारा मैं इस सृष्टि को रचता हूं। क्योंकि दुनिया में एडम को, आदम को, मनु को, ब्रह्मा को सृष्टि का पहला व्यक्ति माना जाता है। उसके बाद बाबा ने कहा न्यू मैन कृष्ण को कहेंगे, न्यू मैन किसको कहेंगे, कृष्ण को, क्योंकि वो तो ओल्ड था, बूढ़ा था, पर तो न्यू मैन तो जन्म तो कृष्ण ने लिया, ठीक है नहीं, कृष्ण है पहला न्यू मैन और राधा है न्यू वीमेन। और उसके बाद बाबा ने कहा सृष्टि तो नारायण से शुरू होती है, सृष्टि चक्र का आरंभ, राजा तो पहला कौन बनता है, नारायण, तो नारायण है नई दुनिया का, नए कल्प का न्यू मैन, नहीं समझ में आई, लक्ष्मी न्यू वीमेन। तो मतलब ये बाबा ने धीरे धीरे, क्योंकि आम दुनिया वाले समझते हैं कि पहला आदम था, पहला ब्रह्मा था, तो बाबा ने उसको कट किया, फिर कृष्ण को बनाया, फिर कृष्ण को कट किया, फिर नारायण को बनाया, तो इस प्रकार से एक एक बात बाबा छोटी छोटी बात अच्छी तरह बैठकर समझाते हैं। आत्मा तो एक ही, ये तो ऑलराउंड पार्ट वाले हैं, बाकी भी सब सतों से तमों में, बाकी सब सतों से तमों में आते हैं, ओल्ड बनते हैं, फिर ओल्ड से न्यू हो जाते हैं, जैसे क्राइस्ट पहले न्यू आया फिर ओल्ड बनकर गया फिर न्यू होकर आएगा। अपने टाइम पर ये बात बड़ी समझने की है, इसमें योग अच्छा चाहिए, पूरा सरेंडर भी चाहिए, तभी वर्षे का हकदार बन सके। सरेंडर होगा तो फिर बाबा डायरेक्शन भी दे सकेंगे कि ऐसे ऐसे करो। कई कोई सरेंडर हैं, फिर कहता हूं कि व्यवहार में भी रहो तो बुद्धि का मालूम पड़े, व्यवहार में रहते हुए ज्ञान उठाओ, पास होकर दिखाओ, गृहस्थ में नहीं जाना है, ब्रह्मचारी होकर रहना तो अच्छा है। बाबा हर एक का हिसाब भी पूछते हैं, मम्मा बाबा की पालना ली है तो फिर कर्ज भी उतारना है तो बल मिलेगा, नहीं तो बाप भी कहेगा कि हमने इतनी मेहनत कर पालना की और हमको छोड़ दिया। हर एक की रग देखनी पड़ती है, फिर डायरेक्शन दिए जाते हैं, समझो इनसे भूल हो जाती है तो बाप उसको अभूल कराए ठीक कर देते हैं। ये भी कदम कदम श्री मत पर चलते रहते हैं, कब नुकसान हो जाता है तो समझते हैं ड्रामा में था, नुकसान हो गया ना तो क्या हो गया, ड्रामा में था, एक भोजन पूरा नहीं हुआ, ड्रामा में था, प्रभु की इच्छा नहीं कहनी, क्या कहना है, ड्रामा की इच्छा। दुनिया वाले कहेंगे भगवान की मर्जी क्या करें, हमने तो पूरा बनाया था, अब भीड़ इतनी आ गई तो करें क्या, बाबा सबको आगे फिर ऐसी बातें होनी नहीं चाहिए। भूल तो अपने दिल को खाती है, यदि कोई भूल हो जाती है तो अपने दिल को भूल की है तो उसकी एवज में फिर बहुत सर्विस में लगना चाहिए, पुरुषार्थ बहुत करना चाहिए, कोई का जीवन बनाना, ये है पुरुषार्थ, ये है पुरुषार्थ। बाबा कहते हैं मुझे योगी और ज्ञानी सबसे प्यारा है, मुझे योगी और ज्ञानी सबसे प्यारा है, योग में रहकर भोजन बनाए खिलाए तो बहुत उन्नति हो सकती है, तो बहुत उन्नति हो सकती है। ये शिव बाबा का भंडारा है, यह शिव बाबा का भंडारा है, तो शिव बाबा के बच्चे जरूर ऐसे योग युक्त होंगे, जरूर ऐसे योग युक्त होंगे। धीरे धीरे अवस्था ऊंच होती है, धीरे धीरे अवस्था क्या होगी, ऊंच होती है, टाइम जरूर लगता है, हर एक का कर्म बंधन अपना अपना, हर एक का कर्म बंधन अपना अपना है। कन्याओं पर कोई बोझ नहीं, कन्याओं के ऊपर कोई बोझ नहीं, हाँ बच्चों पर है, बड़े बच्चे हो गए हैं तो माता पिता को बोझ पड़ता है। बाबा ने इतना समझाया, इतना समय पालना की है तो इन उन्हों की पालना करनी पड़े, हिसाब चुकतू करना है, तो उनकी भी दिल खुश होगी, उनकी भी दिल खुश होगी। सपूत बच्चे जो होते हैं तो वे मुसाफरी से लौटने पर सब कुछ बाप के आगे रखते हैं। कर्जा उतारना है ना, बहुत समझने की बातें हैं, कर्जा उतारना है ना, तो बहुत समझने की बातें हैं। ऊंच पद पाने वाले ही शेर माफिक उछलते रहेंगे, कैसे उछलेंगे, शेर माफिक उछलते रहेंगे। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, नंबर एक, योग में रहे भोजन बनाना है, योग में ही रहे भोजन खाना और खिलाना है, खाना भी है तो खिलाना भी है। बाबा ने जो समझाया उस पर अच्छी रीति विचार सागर मंथन कर योग युक्त हो, औरों को भी समझाना है। वरदान, स्वाप परिवर्तन और विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के ताजधारी, सो विश्व राज्य के ताजधारी भव। जैसे बाप के ऊपर, प्राप्ति के ऊपर हर एक अपना अधिकार समझते, हर एक अपना अधिकार समझते हो, ऐसे स्वपरिवर्तन और विश्व परिवर्तन दोनों के जिम्मेवारी के ताजधारी बनो, तब विश्व राज्य के ताजधा अधिकारी बनेंगे। वर्तमान ही भविष्य का आधार है, चेक करो और नॉलेज के दर्पण में देखो कि ब्राह्मण जीवन में पवित्रता, पवित्रता का, पढ़ाई और सेवा का डबल ताज, डबल ताज, कौन कौन सा, पढ़ाई का, ज्ञान का, पवित्रता का, ब्राह्मण जीवन में पवित्रता का और पढ़ाई और सेवा का, जिम्मेवारी का ताज, दो दो ताज आपने पहनने। यदि यहाँ कोई भी ताज अधूरा है, कोई भी ताज अधूरा है, जिम्मेवारी का ताज नहीं लिया आपने, पवित्र तो बने परंतु फिर भी पद तो नहीं मिलेगा ना, पद तो जिम्मेवारी के हिसाब से मिलेगा, जितनी जिम्मेवारी लेंगे उतना बड़ा राजा बनेंगे, अधिकारी बनेंगे। छत स्लोगन है, सदा बाप की छत्र छाया के अंदर रहो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। सदा बाप दादा की छत्र छाया में रहो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।